हेलो फ्रेंड्स, GSTR 3B जो कि अप्रैल 2022 की हमें फ़ाइल करनी है, उसके लिए ऑलरेडी डेट एक्सटेंड की जा चुकी है, जो कि डेट एक्सटेंड करके हो गई है 24 मई 2022। लेकिन यहां पर एक प्रश्न लोगों का आ रहा है कि क्या हमें टैक्स 20 तारीख तक ही जमा करना है या हम 24 तारीख तक भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न उन लोगों का आ रहा है जो QRMP स्कीम लिए हुए हैं, जिनके लिए टैक्स जमा करने की जो तारीख होती थी वो होती थी 25 तारीख, यानी उन्हें टैक्स 25 तारीख तक जमा करना होता था QRMP वालों को, और जो रेगुलर स्कीम में हैं उनको जमा करना होता था 20 तारीख तक। अब जबकि डेट एक्सटेंड की जा चुकी है, तो डेट जो एक्सटेंड की गई है वो हो गई है अब आपकी 24 तारीख तक। तो जो 24 तारीख तक आपकी डेट हो गई है, उसके लिए आपका था नोटिफिकेशन नंबर 05/2022, जिसमें आप देख पा रहे हैं फॉर्म GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 टिल द 24th डे ऑफ मई 2022। तो इन लोगों को अपना रिटर्न भी 24 मई 2022 तक फाइल करना है और टैक्स भी इनको 24 मई 2022 तक जमा करना है, तब तक उनको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि जिन लोगों ने QRMP स्कीम ले रखी है उनका क्या होगा। तो जिन लोगों ने QRMP स्कीम ले रखी है, जिनको अपना GST PMT 06 25 मई तक फाइल करना था, उनके लिए भी डेट एक्सटेंड की जा चुकी है। यानी QRMP वालों को अपना टैक्स जमा करना होता था, तो उनके लिए भी क्या किया इन्होंने, फॉर्म GST PMT 06 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 टिल द 27th डे ऑफ मई 2022, तो उनकी भी डेट एक्सटेंड करके 27 मई 2022 कर दी गई है। उनको भी अगर वो अपना टैक्स जमा करना है उन्हें, तो 27 मई तक जमा कर सकते हैं, उसके बाद ही उनको इंटरेस्ट पे करना होगा, उसके पहले नहीं। तो ये थी एक जानकारी जिसके संबंध में लोग पूछ रहे थे, तो आपको मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, GSTR 4 से संबंधित समस्याएं अभी भी लोगों के पास हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि GSTR 4 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की समस्या नहीं समाप्त हो रही है, उसके लिए हमें क्या ऑप्शन लेना चाहिए। हालांकि GSTR 4 से संबंधित काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने आपको ये सब चीज़ें बताने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की नई नई समस्याएं हैं और उनका सलूशन उनको नहीं मिल पा रहा है। तो एक बार फिर से मैं आपको GSTR 4 से संबंधित कुछ समस्याओं के निराकरण के लिए, जिन लोगों ने कई बार ऐसे कॉल्स किए हैं या पूछा है, उनको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि GSTR 4 की प्रॉब्लम शुरू हुई Table 6 नहीं भरने से। जिन लोगों ने Table 6 को नहीं भरा है, उन लोगों की ये समस्या उत्पन्न हुई। दूसरी समस्या जो है वो उन लोगों की है कि जिन लोगों ने GSTR 4 2019-20 और 2020-21 का नहीं जमा किया है, ठीक है, या तो Table 6 के कारण समस्या पैदा हो रही है, या फिर उनकी समस्या पैदा हो रही है GSTR 4 19-20 और 2020-21 का नहीं भरा है और 21-22 का जमा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों ने Table 6 नहीं भरा हुआ है, यानी जिन लोगों ने Table 6 नहीं भरा है, उनकी समस्या क्या हुई, 2019-20 में Table 6 नहीं भरा, तो उनकी निगेटिव लाइबिलिटी खड़ी हो गई। और फिर उस निगेटिव लाइबिलिटी को समाप्त करने के लिए 2020-21 में जब वो निगेटिव लाइबिलिटी दिख रही थी, तो क्या किया गया, हमने अपने टर्नओवर को बढ़ा लिया, या टर्नओवर को नहीं बढ़ाया तो हमने क्या कर लिया, अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा लिया। किसमें बढ़ाया हमने इसको, Table 6 में। लोगों ने क्या किया, इसको Table 6 में एक्सटेंड कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। अब कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 2020-21 में उनके कैश लेजर में निगेटिव लाइबिलिटी आ गई। अब हुआ क्या कि जब आपकी निगेटिव लाइबिलिटी खड़ी थी और उस लायबिलिटी को आपने समाप्त नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया, टर्नओवर को बढ़ा लिया। कब बढ़ा लिया, 2020-21 में आके आपने अपने टर्नओवर को बढ़ा लिया है, या फिर आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा लिया है, यानी कि आपने जो पिछला टैक्स नेगेटिव लायबिलिटी थी उसको समाप्त करने के लिए आपने या तो टर्नओवर को बढ़ाया है या टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाया है। अब उसके बाद जब पोर्टल ने यही काम कर दिया कि उसने वहाँ पर जा कर के 19-20 में ही जा कर के आपकी लायबिलिटी को समाप्त कर दिया, तो आपके सामने समस्या पैदा हो गई और अब आ गया आपके सामने कैश लेजर निगेटिव। पहले था आपका नेगेटिव लायबिलिटी और अब हो गया कैश लेजर नेगेटिव। कैश लेजर नेगेटिव आने की वजह से आपको टैक्स जमा करने की समस्या उत्पन्न हो गई। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने DRC 03 से जमा किया है। अभी हम लोग ये इसी के सल्यूशन की बात करेंगे कि इसका सल्यूशन हमें कैसे करना चाहिए था या कैसे करना है। देखिए, DRC 03 से कुछ लोगों ने जमा कर दिया था, जो DRC 03 से जिन लोगों ने जमा कर दिया है उनका भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ। अब अगर उनका भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तो उन लोगों के सामने भी समस्या पैदा हो गई कि वो दोबारा से टैक्स को जमा करें। अब इसके बाद जिन लोगों ने 19-20 और 20-21 का नहीं जमा किया था और 21-22 का जमा करना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम है। तो अब हम देखते हैं कि Table 6 को जिन लोगों ने नहीं जमा किया था, Table 6 में नहीं भरा था, उन लोगों की जो समस्या थी उसका सल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए हमें करना ये है कि जिन लोगों ने Table 6 नहीं भरा या Table 6 में 20-21 में आकर के अपनी लायबिलिटी बढ़ा दिया, उन लोगों के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ। सबसे पहले उत्पन्न हुआ कि Table 6 हमने नहीं भरा। अब जब हमने नहीं भरा तब क्या हुआ, हमने आगे आकर के उस टर्नओवर को एक्सटेंड कर लिया। हमें करना क्या चाहिए था, अगर हमने Table 6 नहीं भरा था तो हमें ग्रीवांस पोर्टल पे जाना चाहिए था। अब ग्रीवांस पोर्टल पर अगर हमने दिया होता तो ये हमारा करेक्शन हो गया होता। हम लोगों ने क्या किया कि Table 6 नहीं भरा और ग्रीवांस पोर्टल पर अपनी शिकायत भी नहीं की। ठीक, जिन लोगों ने ग्रीवांस पोर्टल पे शिकायत नहीं की और Table 6 नहीं भी भरा था उनका क्या हुआ, 25 अप्रैल को इन्होंने आकर के ठीक कर दिया, तो ऐसे लोगों को समस्या नहीं हुई। जिन लोगों ने नहीं भरा था, जिन लोगों ने ग्रीवांस पोर्टल में किया उनका भी ठीक हो गया, जिन्होंने नहीं किया उनका भी ठीक हो गया 25 अप्रैल 2022 को आकर के। अब समस्या ये है कि ये तो हुआ बहुत बाद में, इसके पहले जो ड्यूरिंग द पीरियड था लोगों ने अपने हिसाब से उसका सल्यूशन करने की कोशिश की। अब जिन लोगों ने सल्यूशन करने के लिए क्या किया कि DRC 03 से जमा किया, क्या किया, DRC 03 से जमा किया। मैं एक एक सोल्यूशन को ले रहा हूँ, जिसका जिससे रिलेटेड है वो उस को ध्यान से देखेगा। जिन लोगों ने DRC 03 से जमा किया और उनका एडजस्ट नहीं हुआ, उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को ये करना है कि वो अपना ग्रीवांस पोर्टल पर जाएं और ग्रीवांस पोर्टल पर जा करके ये अपना सबमिट कर दें, अपना रिप्लाई सबमिट करें। ठीक है, और जब भी ये एडजस्ट होगा तो उनका अगर उन्होंने दोबारा जमा कर दिया है तो क्या होगा, रिफंड हो जाएगा, और अगर इन्होंने दोबारा नहीं जमा किया है, वेट कर रहे हैं, तो उनका जैसे ही ठीक हो वो अपना GSTR 4 जमा कर पाएंगे, लेकिन उनको लेट फीस देनी पड़ेगी। तो या तो वो ये करें कि टैक्स जमा कर दें और उसके बाद जैसे ही ग्रीवांस पोर्टल पर अपनी शिकायत करें, उसके बाद जैसे ही ठीक होगा उनको रिफंड हो जाएगा। अब बात आती है उन लोगों की जिन लोगों ने क्या किया, टर्नओवर को बढ़ाया या उन्होंने लायबिलिटी को बढ़ाया। तो जिन लोगों ने टर्नओवर को बढ़ाया या लायबिलिटी को बढ़ाया उनके लिए दिक्कत ये हो गई कि आपकी जो लायबिलिटी थी वो एक्सेप्टेड हो गई, कैसे? आपको दिखाना था 1,00,000 रुपए की सेल, आपने किया पिछले साल की थी 75,000 रुपए की सेल, टोटल आपने दिखा दिया 1,75,000 रुपए की सेल। अब जब आपने दिखा दिया तो 1,75,000 पर आपको टैक्स देना पड़ा। अब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो जो आपका निगेटिव था वो क्या हुआ? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। निगेटिव तो समाप्त हो गया, लेकिन जब पोर्टल ने जाकर के ठीक कर दिया, पोर्टल ने क्या किया, पोर्टल ने 25 अप्रैल को जाकर के ठीक कर दिया, तो आपकी निगेटिव लायबिलिटी वहाँ भी ख़त्म हो गई। यानी अब क्या हुआ, आपका माइनस में यानी निगेटिव कैश लेजर हो गया। इसी तरह से जिन लोगों ने अपनी लायबिलिटी को एक्सटेंड किया था, उन लोगों के साथ भी ये समस्या हो गई कि उन्होंने लायबिलिटी एक्सटेंड करके किया था, इसलिए उनका भी कैश लेजर निगेटिव हो गया। अब देखिए, अब आप लोगों को करना क्या है। देखिए, अब आपको करना ये है कि जो आपने इसको जमा किया, जमा करने के बाद आपको इसको ग्रीवांसेस पोर्टल पे जाना था। ग्रीवांसेस पोर्टल पर जा कर के आपको अपनी बात कहनी है। कैसे कहनी है? ग्रीवांसेस पोर्टल पर जा कर के आपको डिटेल अपनी सबमिट करनी है, ठीक है। जो भी आपका रिप्लाई है वो सबमिट करना है। कैसे सबमिट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपने अपना टर्नओवर बढ़ा लिया है तो आपको ग्रीवांस पोर्टल पर जा कर के अपना पूरा डिटेल बनाना है, 2019-20 का, 2020-21 का और 2021-22 का। कितना आपका टर्नओवर इसमें था, कितना टर्नओवर आपका इसमें था। मान लीजिए यहाँ पर आपका था 75,000, यहाँ पर आ गया आपका टोटल 1,00,000। तो आप जब 21-22 का, तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 1,00,000 के बजाय भरा 1,75,000। तो ये आपको डिटेल उनको समझानी है कि ये मेरा टर्नओवर था और इसके बाद इसका टर्नओवर ये था, और ये कहाँ से प्रूफ होगा, CMP 08 से। तो आपको इसको करना है प्रूफ CMP 08 से, और CMP 08 का हवाला देते हुए उसके स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए और उसको दीजिए कि ये मैंने टर्नओवर बढ़ाया जिसकी वजह से मेरी कैश लेजर लायबिलिटी बढ़ गई, माइनस में चली गई, ठीक है। दूसरा, जिन लोगों ने अपनी लायबिलिटी को बढ़ाया है उन लोगों के लिए भी यही है कि वो अपना स्क्रीनशॉट लेकर के भेजें कि 19-20 में मेरा ये था, मैंने Table 6 नहीं भरा था, और 20-21 मेरा टर्नओवर ये था, तो मैंने टर्नओवर तो यही दिखाया लेकिन लायबिलिटी को मैंने बढ़ा करके दिखा दिया। तो अगर टर्नओवर यही दिखाया, लायबिलिटी को बढ़ा करके दिखा दिया है, तो वो भी देख पाएंगे कि जो आपका टैक्स रेट था, मान ली 1% टैक्स रेट था आपका, तो 1% आता है आपका कम, और यहाँ पर आपने लायबिलिटी कर दी पे ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमसे गलती हो गई, हमने इसको यहाँ पर बढ़ा करके दिखा दिया, ये देंगे। इसके अलावा जिन लोगों की DRC 03 या और भी किसी कारण से प्रॉब्लम है, वो अपना ग्रीवांसेस पोर्टल पर उस चीज़ को डालें जरूर। अब देखिए, दूसरी बात आती है कि रिफ़ंड होगा कि नहीं। देखिए, रिफ़ंड के बारे में एडवाइजरी तो जारी की गई, लेकिन एडवाइजरी में ये नहीं बताया गया कि ये रिफ़ंड कैसे होगा, रिफ़ंड का कोई प्रोसेस नहीं दिया गया है। अब हमें करना क्या है? देखिए, रिफ़ंड तो तभी होगा जब आपके कैश लेजर में अमाउंट होगा। क्या होगा? कैश लेजर में जब अमाउंट होगा तभी आपका रिफ़ंड हो पाएगा। अब यहाँ पर आपका निगेटिव कैश लेजर है, तो जैसे ही आप पैसा जमा करेंगे ये निगेटिव कैश लेजर ख़त्म हो जाएगा, आपके यहाँ शो करेगा नील यानी 00। जब 00 शो करेगा तो आपका रिफ़ंड कैसे होगा? रिफ़ंड तो होगा नहीं। अब हमें करना क्या है? रिफ़ंड देखिए, और एडवाइजरी के साथ साथ इन्होंने उसके बाद भी कोई प्रोसेस उसका नहीं बताया कि रिफ़ंड कैसे होगा। अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें ग्रीवांसेस पोर्टल पर अपनी ये रिप्लाई डालनी है, उसके अलावा अपने ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर को ये रिप्लाई देनी है। वहाँ पर हम ऑनलाइन सबमिट कर दें और यहाँ पर उसको मैनुअली भी दे सकते हैं, और दे करके अपनी बात को रखें, क्योंकि जब तक आपके कैश लेजर में
पैसा नहीं आएगा तब तक आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा। तो आपको करना यही है कि सबसे पहले ग्रीवांसेस करें, उनको ठीक कराएं, ठीक कराने के बाद ही आप रिफंड ले पाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि पोर्टल पर ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी आ रही कि रिफंड होगा कि नहीं, रिफंड हमारा होगा कि नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 00 हो गया, अब रिफंड कैसे होगा या रिफंड का कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया, वो कैसे होगा? तो देखिए, रिफंड तभी हो पाएगा जब आपका ये करेक्शन हो जाएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत रिफंड में किन लोगों को आएगी? उन लोगों को रिफंड में दिक्कत आएगी जिन लोगों ने अपना टर्नओवर बढ़ाया है और लाइबिलिटी को बढ़ाया है। तो उनके लिए दिक्कत यह है कि वो कैसे एक्सेप्टेड हो, क्योंकि कोई असेसमेंट का प्रोसीजर दिया नहीं गया है। जब असेसमेंट होगा नहीं, आपका यह सेल्फ डिक्लेरेशन है, जब सेल्फ डिक्लेरेशन है तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आपको ग्रीवांस करना है, वेट एंड वॉच करना है, या फिर आपको अपील में जाना है, क्योंकि ये समस्या पोर्टल के द्वारा की गई और उसका सलूशन नहीं दिया गया जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो गई है। तो दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग, क्योंकि अब वेट कर सकते हैं, जब ये ठीक हो जाए तब फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको जो लेट फीस है वो पे करनी पड़ेगी और लेट फीस अब मैक्सिमम आपकी 2000 रुपीज़ है, यानी 2000 रुपये है, ये तो घटनी बढ़नी नहीं है। तो आप वेट कर सकते हो, अगर इसका कोई सलूशन आता है तो उसके हिसाब से आप इसको फाइल कर सकते हो। अब दूसरी समस्या उन लोगों की आ रही जिन्होंने 19, 20, 21 और 21-22 का अपना रिटर्न नहीं फाइल किया है। उनके लिए आ रही कि 10000 रुपये उनको 19-20 में देना है और 20-21 में भी उनको 10000 रुपये देना है और 21-22 में उनको 2000 रुपये देना है। तो जिन लोगों ने फाइल नहीं किया है उनके लिए भी वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, या तो वो ये 22000 रुपये जमा करें और अपना रिटर्न फाइल कर दें, या फिर वो वेट करें कि ऐसा कोई एडवाइजरी आए या ऐसी कोई वेवर स्कीम आए जिसके माध्यम से वो इसको कर पाएँ। तो अभी सरकार के द्वारा ऐसी नियर अबाउट कोई ऐसी नहीं दिख रही है स्कीम आती हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि GST पोर्टल पर वो अगर फाइल करना चाह रहे हैं तो ये टैक्स दें। दूसरा, GST काउंसिल की जो मीटिंग है वो प्रपोज्ड है, अभी भी उसकी डेट नहीं आई है। तो जो प्रपोज्ड है, हो सकता है उसमें ये आपको समाधान इसका मिल पाए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो बहुत सारे लोगों ने भेजा है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम GSTR-4 की ही आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जब GSTR-4 की प्रॉब्लम है, उसी के साथ साथ GSTR-1 की प्रॉब्लम है, GSTR-4 है, GSTR-1 है, और इसके बाद अब 3B की भी समस्या और 2B की भी समस्या आई है। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें GST काउंसिल में रखी जाएं और उसके बाद आपको कोई सलूशन मिल सके। तो मेरा ख्याल है मैंने सारी चीज़ें जो आप लोग बार बार फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ रहे हैं उनको क्लियर करने का प्रयास किया है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं GSTR-3B जो कि हमें अप्रैल महीने का फाइल करना है, जिसकी डेट ऑलरेडी एक्सटेंड की जा चुकी है, उसके संबंध में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग इसलिए कि GSTR-3B फाइल करने जब आप जाएंगे तो जो बातें मैं बताने वाला हूँ उनको जब आप चेक करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि GST पोर्टल क्या ऐसा भी कर सकता है। तो आप GSTR-3B फाइल करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसमें जो बातें बताई जा रही हैं उनको ध्यान से ज़रूर चेक करके एक बार देखें कि ऐसा तो नहीं कहीं आपके द्वारा GSTR-3B गलत फाइल हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे, इन्होंने GSTR-3B फाइल करने के लिए जो दिक्कत आ रही थी GSTR-2B में, उसके लिए एक एडवाइजरी जारी की थी जिसके बारे में ऑलरेडी मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे कि वो एडवाइजरी GST पोर्टल से गायब हो चुकी है, केवल यहाँ पर 10 मई 2022 का जो रिपोर्टिंग 6% रेट का था उसके बारे में दी जा रही है। उसके बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इतनी प्रॉब्लम्स उसमें भी थी। अब आज हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं GSTR-3B पे, तो GSTR-3B पे इन्होंने जब GSTR-2B अपना पोर्टल पर अपलोड किया, यानी उनका कहना है कि GSTR-2B पोर्टल पर आ चुका है और आप उसके हिसाब से रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने उसके बारे में क्या कहा और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि GST पोर्टल में जो भी एडवाइजरी आ रही है, जो बातें बताई जा रही हैं, वो आपस में मैच नहीं करती हैं। यानी आपको इतना भ्रमित किया जा रहा है GST पोर्टल के द्वारा कि आप अपना रिटर्न गलत फाइल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उसके बाद आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि ये पोर्टल क्या क्या कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं इनका, GSTR-2B इज नाउ अवेलेबल फॉर अप्रैल 2022। इट मे बी नोटेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC गेट्स ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR-3B फ्रॉम GSTR-2B ओनली इफ द टैक्स पेयर हैज नॉट सेव्ड एनी डेटा इन GSTR-3B फॉर द टैक्स पीरियड। तो इन्होंने बता दिया कि GSTR-2B आ चुका है और उसका जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा GSTR-3B में आता है वो केवल उन्हीं लोगों को मिल पाएगा या उन्हीं का ऑटो पॉपुलेट हो पाएगा जिन लोगों ने अपना GSTR-3B अभी तक सेव नहीं किया है। जिन लोगों ने सेव कर दिया है उनको वो डेटा वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। चलिए दूसरी बात करते हैं, द ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ITC इन GSTR-3B will not happen for those taxpayer who have already saved data in GSTR-3B. In such cases, the taxpayer has to input the ITC data in table 4 of GSTR-3B. तो जिनका वहाँ पर नहीं शो हो रहा है, यानी उनको क्या करना है, टेबल 4 में जा करके अपनी ITC GSTR-3B में फिल करनी है, भर लेनी है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं, दीज टैक्स पेयर्स आर एडवाइज टू व्यू द सिस्टम जनरेटेड PDF ऑफ GSTR-3B वेयर ITC फिगर्स वुड बी अवेलेबल इन टेबल 4। ITC कैन आल्सो बी सीन ऑन माउस ओवर ऑफ द रिस्पेक्टिव फील्ड्स ऑफ द GSTR-3B। तो इन्होंने बता दिया कि ऐसा है कि अगर आपका GSTR-3B वहाँ पर नहीं शो हो रहा है तो आपको करना क्या है, जो ऑटो पॉपुलेटेड सिस्टम जनरेटेड GSTR-3B है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप ITC अपनी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका इन्होंने क्या बताया कि जब आप टेबल 4 में जाएंगे तो वहाँ पर अगर कर्सर को यानी माउस को लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर चूंकि फील्ड डेटा तो नहीं दिख रहा है कि ITC कितनी यहाँ पर है, लेकिन जब आप वहाँ पर अपना माउस लेकर के जाएंगे, कर्सर को लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करेगा कि इतना अमाउंट ITC में है। यहाँ तक तो सारी बातें ठीक लग रही हैं। अब इसके बाद समस्या यहीं से शुरू होती है। समस्या क्या शुरू होती है, जब हम अपना GSTR-2A खोलते हैं, फिर GSTR-2B खोलते हैं और फिर GSTR-3B। जब हम GSTR-2A देखते हैं तो वहाँ का डेटा GSTR-2B से मैच नहीं करता और जो GSTR-2B का डेटा है वो GSTR-3B से मैच नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि ये सभी में प्रॉब्लम है, लेकिन ये मैक्सिमम में प्रॉब्लम है। आप जब तक इन डेटास को चेक ना कर लें तब तक अपना GSTR-3B फाइल बिल्कुल भी ना करें। अब मैं बताने वाला हूँ कि अंतर कहाँ से है। सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि GSTR-2A का डेटा GSTR-2B से कभी भी मैच नहीं करता, यानी मैक्सिमम मैच नहीं करता। उसके कई कारण हैं, अगर हम उन कारणों को निकाल दें तब तो हमारा GSTR-2A का डेटा GSTR-2B से मैच करना चाहिए। अगर उसने अप्रैल महीने का ही रिटर्न 11 तारीख या IFF 13 तारीख तक कर दिया है तब तो उसका डेटा 2B में आना ही चाहिए, या फिर भी कोई शंका है। लेकिन अब अगर उसने डेटा टाइम से फाइल कर दिया है, GSTR-2A में दिख रहा है लेकिन GSTR-2B में नहीं आ रहा है, कई लोगों का हम लोगों ने डेटा कंपाइल किया, चेक किया, तो क्या हो रहा है, अगर 20 पार्टियों का है तो उसमें 2 पार्टी 3 पार्टी किसी की एक पार्टी का डेटा GSTR-2B में नहीं आ रहा है, जबकि उसने अपना रिटर्न टाइमली फाइल किया हुआ है। और उसके अलावा और अच्छी बात ये समझिए कि GSTR-2A में दिख रहा है, और वहाँ से पता भी लग रहा है कि वो टाइम से फाइल किया गया है, उसके बावजूद भी जीएसटीआर टू बी में वो नहीं आ रहा है। अच्छा, टू बी में नहीं आ रहा है तो जीएसटीआर हमारे थ्री बी में भी वो नहीं आ रहा है। लेकिन अब हमें करना क्या है? देखिए, हम अपना डेटा पोर्टल पर बिल्कुल भी भरोसा ना करते हुए अपना डेटा प्रॉपरली चेक करें, जीएसटीआर 2A को भी और जीएसटीआर 2B को भी। अब मैं 2A और 2B दोनों की बात क्यों कर रहा हूँ? उसका कारण ये है कि जीएसटीआर 2B में मान लीजिए वो ITC रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है और 2A में रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर 2A में रिफ्लेक्ट कर रही है और उसके द्वारा अपना रिटर्न टाइम से फाइल किया गया है, उसको आपने चेक कर लिया कि वो टाइम से फाइल है, यानी हमारे 2B में आना ही चाहिए, और 2A में आ रहा, वहाँ पर भी डेट दिखा रहा है कि ये टाइम से फाइल है, तो क्या आप टैक्स जमा करना उचित समझेंगे? या तो पार्टी से हम फिर कहें कि इसका टैक्स जमा करिए, और या फिर हम उसको 2B का मानते हुए 3B में उसको ले लें और अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर लें, यानी ITC हम वो ले लें जो हमारे 2A में दिख रही है, उसके द्वारा रिटर्न टाइम से फाइल किया गया है, यानी कंपल्सरली उसको GSTR 2B में आना ही चाहिए था, और अगर नहीं दिख रहा है तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं क्योंकि टाइम से फाइल है। एक बात। दूसरी बात, आप नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप उसका टैक्स जमा करिए और नेक्स्ट मंथ में उसको क्लेम करिएगा, लेकिन चेक जरूर करें, क्योंकि ये दिक्कत मोस्टली आ रही है। पोर्टल पर भरोसा करके हम अपना GSTR 3B फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग बिना देखे ITC जो ऑटो पॉपुलेटेड है उसी के आधार पर भरते हैं, तो कई में 00 अभी भी आ रहा है, 2A में बिल दिख रहे हैं, 2B में 00 दिख रहा है, 2B में कोई भी उसमें से फिगर नहीं दिख रही है। तो अब आपको मैन्युअली वर्क करना पड़ेगा। मैन्युअल वर्क मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब GSTR 3B फाइल करेंगे, ITC अगर आपकी मिसमैच है तो आपको मैन्युअली वहाँ पर भरनी पड़ेगी। हाँ, वहाँ पर अगर 2B में नहीं दिख रही और 2B में होनी ही चाहिए थी तो वो रेड जरूर करेगा, लेकिन रेड की परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपनी जगह पर सही हैं तो हम उसका आगे रिप्लाई भी कर पाएंगे, जिससे हमारे क्लाइंट पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके लिए मेरी पर्सनल सलाह ये है कि आप GSTR 2A, GSTR 2B और GSTR 3B का ऑटो पॉपुलेटेड डेटा ज़रूर चेक करें, गलती ना करें, क्योंकि उसमें जो भी फिगर्स आ रही हैं वो अभी भरोसे लायक मुझे नहीं लगती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, बहुत सारे लोगों ने अपना डेटा भी भेजा है साथ में ID पासवर्ड के साथ कि देखिए सर, इसमें ये दिक्कत आ रही है, और हम लोगों ने उसको कंपाइल भी किया, चेक भी किया, तो इस तरह की दिक्कतें ऑलरेडी हैं। जो बात उन्होंने यहाँ पर बता दी कि GSTR 2B इज़ नाउ अवेलेबल फॉर अप्रैल 2022, तो डेटा तो अवेलेबल उन्होंने करा दिया, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी सॉल्व नहीं हुई हैं। मुझे लगता है GST पोर्टल को वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अभी उन लोगों ने हमें परेशान किया GSTR 4 में, उसके बाद फोर्म परेशान किया GSTR 1 में, और अब हमारी समस्या GSTR 3B में भी शुरू हो गई है। यूँ कहें तो 2B और 3B दोनों की हमारी समस्या हो गई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ठीक लगे तो जो मैंने बताया उसके हिसाब से करें, और नहीं तो अपने हिसाब से विचार करके रखें, लेकिन उसको चेक जरूर कर लें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आजकल न्यायपालिका से हम लोगों को उम्मीदें बहुत सारी बढ़ी हैं, क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा काफ़ी डिसीजन ऐसे लिए जा रहे हैं जिनसे हमें लाभ होने की उम्मीद है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, और जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किए उनमें हम लोग बहुत समय से ये देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा परेशानी आ रही है, चाहे वो GSTR 3B हो, चाहे वो GSTR 1 हो, चाहे वो GSTR 4 हो, चाहे वो GSTR 2B हो, ये अभी लेटेस्ट हम लोगों को इतनी सारी समस्याएं इसमें आ रही हैं कि रिटर्न फाइलिंग के बाद नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो खैर, हम लोग उस बिंदु पर आते हैं कि आजकल जो हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यायपालिका के बारे में, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो हम लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी हो सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है, रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल नॉट एब्सोल्युटली बाइंडिंग ऑन सेंट्रल एंड स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि जो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस होती हैं वो हमारे केंद्र पर और राज्य पर प्रभावी नहीं होती, उनके लिए मानना अनिवार्य नहीं होता, उनके ऊपर उनकी बाध्यता नहीं होती है। क्या होता है फिर, केवल उनका काम होता है सिफारिश देना, यानी हमारी जो जीएसटी काउंसिल है उसका काम है सिफारिश देना, रिकमेंडेशन करना या उनके साथ सहयोग करना या एक प्रेरक का कार्य करना या सलाह देना, इस तरह के काम जो हैं हमारी जीएसटी काउंसिल करती है। लेकिन अगर कोई सलाह हमारी या कोई अनुशंसा या कोई रिकमेंडेशन हमारी जीएसटी काउंसिल करती है तो क्या हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उसके मानने की बाध्यता है? तो इसी बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि इनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। क्यों नहीं है? व्हाइल रीडिंग आउट ऑफ ऑपरेशन पार्ट ऑफ द जजमेंट, जस्टिस चंद्रचूड ऑब्जर्व दैट रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल आर प्रोडक्ट ऑफ कोलोबरेटिव डिस्कशन। इट इज नॉट इम्परेटिव दैट वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स मस्ट ऑलवेज पजेज ए हायर शेयर। उनका इसमें हायर शेयर हो सकता है, वो हमें सलाह दे सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूलिंग आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट बिगिन विद ए नॉन स्टैंड क्लाज एंड आर्टिकल 246A डज नॉट इनविसेज ए रिप्रेजेंसी प्रोविजन्स। इंडियन फेडरलिज्म इज ए डायलॉग इन विच स्टेट एंड सेंटर ऑलवेज इंगेजेज इन ए डायलॉग। द बेंच स्टेटेड इन ए जजमेंट विच एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। चूँकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो फेडरलिज्म की है, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस राज्य सरकार या केंद्र सरकार जीएसटी काउंसिल की बात मानने को बाध्य हो। फिर क्या है, जीएसटी काउंसिल अपनी सलाह दे सकती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस पर कानून बना सकती है। तो कानून वो कब बनाएंगे, जब जीएसटी काउंसिल हमें सलाह दे रही है, हमारे साथ इस तरह की सहयोग कर रही है, हमें रिकमेंडेशंस दे रही है, तो हम सिफारिश कर रही है, तो हम उस पर देखेंगे, यानी कौन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही देखेगी क्या उस पर कानून बनाने की आवश्यकता है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कानून बनाने की आवश्यकता है तो वो उस पर कानून बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जीएसटी काउंसिल कोई सिफारिश को केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर बाध्य करे। इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात कही है। तो जैसा कि हम लोगों ने ये देखा कि जीएसटी काउंसिल क्या कर सकती है, केवल और केवल सलाह दे सकती है। इसको मैंने हिंदी में भी करने की कोशिश की थी तो जो ये है कि आज माना कि जीएसटी परिषद सिफारिश संघ पर बाध्यकारी नहीं है और आसरक न्यायमूर्ति डी वाई चंद चूँकि अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संसद का इरादा है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों का प्रेरक मूल्य होगा। महत्वपूर्ण रूप से न्यायालय ने माना कि राज्य और केंद्र दोनों वस्तु और सेवा कर के मामलों पर समान रूप से कानून बना सकते हैं, वो केंद्र के लिए और वो राज्य के लिए। फैसले के संचालन भाग को पढ़ते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें सहयोगात्मक चर्चा का उत्पाद हैं। ये अनिवार्य नहीं है कि संघीय इकाइयों में से एक के पास हमेशा एक उच्च हिस्सा होना चाहिए। इस फैसले के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 279A एक गैर अनिवार्य खंड से शुरू नहीं होता है और अनुच्छेद 246A एक प्रतिकूल प्रावधान की परिकल्पना नहीं करता है। भारतीय संघवाद एक संवाद है जिसमें राज्य और केंद्र हमेशा एक संवाद में संलग्न होते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि भारतीय संघवाद एक संवाद है जिसमें क्या होगा, राज्य और केंद्र हमेशा एक संवाद में संलग्न होते हैं, पीठ ने एक फैसले में कहा जिसमें सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के महत्व पर जोर दिया गया था। तो ये थी आज की बात जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को ये जानकारी दी है। इसके साथ ही साथ मैं एक बात आप लोगों से फिर भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग बड़ी मेहनत से इन चीज़ों को लाते हैं और अपना वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें इन चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें और मैं आपके साथ जो भी लेटेस्ट जानकारी आती है उसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें जिससे हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमें लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसमें आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। तो इसी के साथ एक बार फिर से कि आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फ्रेंड्स, ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई आज 3 बजे यानी शाम 3 दोपहर के बाद 3 बजे से सुनवाई आरंभ होनी थी जो कि लगभग 3:15 बजे के आसपास आरंभ हो पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के मामले में एक आदेश दिया है। आइए देखते हैं कि वो आदेश क्या है और कौन कौन सी चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से ध्यान दिया है। तो सबसे पहली बात यह है कि ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि जिला जज ही करेंगे पूरे मामले की सुनवाई। आगे आगे देखते हैं, हम लोग पूरी हाईलाइट्स पे चर्चा करेंगे कैसे कैसे मामला आगे बढ़ा और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञानवापी मामले में 3 जजों की बेंच थी जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। यूपी सरकार की ओर से तुषार मेहता जी ने अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सुझाव दिए हैं। पहला, जब तक ट्रायल कोर्ट इस आवेदन पर फैसला लेता है तब तक हमारा अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। दूसरा, कोर्ट ने वकीलों से पूछा कि कौन कौन किस किस पक्ष की ओर से पेश हो रहे हैं। इसके बाद तीसरा सुझाव है कि मामले की जटिलता को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट जज मामले की सुनवाई करें। इसके आगे मामला जब बहस में आया तो क्या बात हुई। इस मामले में हिंदू पक्ष ने कहा कि निचली अदालत के सभी फैसलों पर अमल हो चुका है, मस्जिद पक्ष की याचिका बेमानी है। अब जब हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी उसके बाद इस सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इसकी सुनवाई जिला जज ही करें तो बेहतर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे ट्रायल कोर्ट के फैसले पर कोई संदेह नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष ने माहौल बनाने की कोशिश की और 500 साल से कायम धार्मिक स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई जुलाई में होगी, तब तक ट्रायल कोर्ट में सभी पेंडिंग मामले निपटाए जाएं। इसके बाद फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट की सिलेक्टिव लीक बंद होनी चाहिए, सभी प्रकार की रिपोर्ट सीधे सीधे कोर्ट में पेश होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम इस बारे में आदेश पारित करेंगे कि सर्वे की रिपोर्ट की सिलेक्टिव लीक बंद होनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने कहा, अगर वजू खाने को लेकर आपको आशंका है तो हम उसकी सुरक्षा को लेकर आदेश पारित कर सकते हैं। कोर्ट के पूछने पर यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो सरकार से निर्देश लेकर बताएंगे। इसी बीच हुजैफा अहमदी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर निचली अदालत के आदेशों को सवाल खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के उस मुद्दे को नहीं माना जिसमें उन्होंने कहा कि 500 साल के स्टेटस को बदलने की कोशिश हो रही है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। इस पर कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर तो नमाज अब भी हो रही है, यह नहीं कहा जा सकता कि स्टेटस बदला जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो वजू खाने की सुरक्षा के आदेश दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जिला जज ही ज्ञान वापी पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में ही कहा था कि इस मामले की सुनवाई जिला जज ही करें। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को वापस जिला जज के पास ही ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिला जज ही वजू के लिए व्यवस्था करें। कोर्ट ने आदेश दिया कि नमाज में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम पक्ष के मामलों को तेजी से सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी के दौरान जज ने कहा, वजू के लिए जगह का इंतजाम होगा और शिवलिंग के दावे वाली जगह की भी सुरक्षा हो। तो आज की ये विशेष टिप्पणियाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई हैं और इसमें उन्होंने यही सबसे मेन बात निकल करके आई है कि जो मामले की सुनवाई है वो जिला जज ही करेंगे और तब तक ये रुका रहेगा और फिर से इसकी जुलाई के सेकेंड वीक में इसकी सुनवाई की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। जीएसटी में जीएसटी नोटिसेस के लिए एक नया सिस्टम आया है, आज हम लोग उसी के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं कि जीएसटी नोटिसेस जो आ रहे हैं और अब जो जीएसटी नोटिस आने वाले हैं उनके लिए एक नया सिस्टम आया है और उस सिस्टम के द्वारा अब जीएसटी के नोटिस भेजे जाएंगे। तो हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी तक जीएसटी पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है, हमारे GSTR 3B अभी भी कायदे से फाइल नहीं हो पा रहे हैं। उसके संबंध में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है तो उसको आप ज़रूर देखें और देखने के बाद ही अपना GSTR 3B फाइल करें, क्योंकि जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मैंने डिटेल से डिस्कस की। चलिए खैर आइए अब देखते हैं कि जो ये जीएसटी नोटिस का सिस्टम है वो क्या है। प्रांत के अंतर पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दाखिल किए जाने वाले फॉर्म GSTR 3B में घोषित करदाता के विरुद्ध ITC के समायोजन के संबंध में GSTN द्वारा भेजे गए डेटा के आधार पर विभागीय वेबसाइट पर GST MIS के रेड फ्लैग मॉड्यूल में उपलब्ध कराया गया। किस में उपलब्ध कराया गया? रेड फ्लैग मॉड्यूल में। तो अब आप ये जान लीजिए कि अब जो आपको नोटिस आने हैं वो कहाँ से आने हैं? GST MIS के रेड फ्लैग मॉड्यूल में। ये क्या है? रेड फ्लैग मॉड्यूल पर उपलब्ध विवरण की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के 22,297 मामलों में GSTR 3B एवं GSTR 2A में रुपये 3,213.35 करोड़ एवं वर्ष 2018-19 में GSTR 3B एवं GSTR 2A की 33,104 मामलों में 10,24,172.92 करोड़। मतलब देखिए आप कितनी बड़ी भिन्नता आ रही है ITC की। हालांकि ये जो है ये आपकी केवल प्रांत की है, यानी राज्य कर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये जो डेटा है ये केवल उत्तर प्रदेश का है। तो इसमें जो ये बता रहे हैं कि 17-18 में कितना अंतर आ रहा है, 3,213.35 करोड़ का, और 2018-19 में जो आ रहा है वो आ रहा है 10,24,172.92 करोड़। इतने की ITC की भिन्नता प्रदर्शित हो रही है, यानी कितना बड़ा मिसमैच है, कितनी ज़्यादा भिन्नता है। खैर आगे देखते हैं। वर्ष 2017-18 के मामलों में धारा 73 के अंतर्गत दिनांक 5 फरवरी 2023 तक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जा सकती है। कब तक की जा सकती है? 2017-18 के जो मामले हैं उनके लिए समय सीमा है 5 फरवरी 2023 तक। यानी समय डिपार्टमेंट के पास कम होता जा रहा है, इसलिए बार बार वो इस तरह से सूचना दे रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप फटाफट कार्रवाई करिए। किसके लिए? ये कार्रवाई करने के लिए जो बताया जा रहा है ये है डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए। यानी जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर हैं उनको ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो नोटिस दें और उस नोटिस का निस्तारण भी करें, क्योंकि उनके पास अब जो सेक्शन 73 की नोटिस देने का समय है वो केवल 5 फरवरी 2023 तक का ही है, वर्ष 2017-18 के लिए। इसके आगे देखते हैं, इसी प्रकार वर्ष 2018-19 के मामलों में धारा 73 के अंतर्गत दिनांक 31/12/2023 तक, कब तक का समय है, 31/12/2023 तक का विधिक कार्रवाई पूर्ण की जा सकती है। तो इसलिए इनको ये बताया गया है और इनको ये डेटा भी दिया जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो क्या करें, 2017-18 के मामलों को प्रियॉरिटी पे रखते हुए उनको 5 फरवरी 2023 तक उसकी विधिक कार्रवाई पूर्ण कर लें, और जो मामले 2018-19 से संबंधित हैं जिनमें उनको सेक्शन 73 की नोटिस देनी है या उन मामलों का निस्तारण करना है उसके लिए इनके पास समय है 31/12/2023 तक। अतः निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 हेतु रेड फ्लैग मॉड्यूल पर, यानी ये मामले कहाँ से उठाने हैं, ये हैं रेड फ्लैग मॉड्यूल पर उपलब्ध मामलों में समयांतरगत कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। किसी भी मामले के काल बाधित हो जाने के कारण राजस्व क्षति होने पर संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। तो ये डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के लिए बहुत ही ध्यान से देने और देखने वाली बात है कि उन्हें इन्हीं समय के अंतर्गत नोटिस भी देनी है और उन मामलों का निस्तारण भी कर देना है। अगर वो समय से निस्तारण नहीं करते हैं तो उसका उत्तरदायित्व तो संबंधित अधिकारी का होगा। यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेड फ्लैग मॉड्यूल पर उपलब्ध मामलों में कृत कार्रवाई का विवरण खंड कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध एंट्री मॉड्यूल में, कहां पर करना है, एंट्री मॉड्यूल में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा, जिससे कृत कार्रवाई का प्रभावी अनुसरण सुनिश्चित हो सके। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो ये डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के लिए है कि उनको समय के अंतर्गत इन मामलों की नोटिस देनी है, नोटिस के साथ साथ उन मामलों का निस्तारण भी करना है। लेकिन अगर वो समय से नहीं करते हैं, यानी कि समय का मतलब ये है सेक्शन 73 की नोटिस अगर 2017-18 की देनी है और मामले का निस्तारण करना है उसके लिए समय है 5 फरवरी 2023 तक, और 2018-19 का मामला अगर है तो उसकी सेक्शन 73 के अंतर्गत नोटिस देने का समय है 31 दिसंबर 2023 तक, यानी इस समय तक उनको नोटिस और उसकी विधिक कार्रवाई पूर्ण कर लेनी है। और ये नोटिसेज उपलब्ध होंगी रेड फ्लैग मॉड्यूल पर, और इसकी जो कार्रवाई है वो पूरी करनी है, और पूरी करने के बाद उसको विभागीय वेबसाइट के उपलब्ध एंट्री मॉड्यूल में अनिवार्य रूप से करनी है। तो ये था अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश, और इसी के हिसाब से उनको पालन करना है। अगर वो इसका पालन नहीं करते हैं तो जो भी राजस्व की क्षति होगी उसका उत्तरदायित्व उस संबंधित अधिकारी पर होगा। तो ख़ास तौर से ये विभागीय अधिकारियों के लिए है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब उनके द्वारा नोटिस दी जाएगी तो उसका रिप्लाई हमें भी सबमिट करना है। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर हैं उनके साथ साथ हम लोग भी इस चीज़ को ध्यान से देखें और समझें और अपनी तैयारी यानी प्रिपरेशन उसी के हिसाब से करें। तो ये थी आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मनमानी करते हैं, वो अपने हिसाब से चाहते हैं कि टैक्स जमा किया जाए, और वो ये प्रेशर बनाते हैं कई बार टैक्स पेयर्स के ऊपर कि जो हम कह रहे हैं उसके हिसाब से आप टैक्स को जमा कर दीजिए। यानी पहले उन्हें जो आदेश जारी करना है, जो नोटिस जारी करना है, वो नहीं करते हैं, और उसके पहले ही ये प्रेशर बनाते हैं कि जो हम कह रहे हैं उस हिसाब से आप वॉलंटरी टैक्स पेमेंट कर दीजिए। तो तो दोस्तों ये एक बड़ी समस्या थी जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा था और उनके प्रेशर में बहुत सारे लोग टैक्स जमा कर देते थे और टैक्स जमा करने के बाद उनको ना नोटिस आ रहा है ना आदेश आ रहा है, जिसके कारण वो अपना पक्ष भी नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो उन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा दिशा निर्देश जारी किया गया है और उस दिशा निर्देश में इस पर अंकुश लगाने का काम किया गया है। तो आइए देखते हैं कि वो दिशा निर्देश क्या है और अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये है इंस्ट्रक्शन नंबर 01/2022-23। ये जारी हुआ है 25 मई 2022 को, जो कि GST इन्वेस्टिगेशन विंग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें इन्होंने बताया, डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन। देखिए होता क्या था, जब भी किसी के यहाँ सर्च होती है, इंस्पेक्शन होता है या इन्वेस्टिगेशन होता है, उस समय उनके ऊपर ये दबाव बनाया जाता है कि आप टैक्स डिपॉजिट कर दीजिए। During the course of search, inspection or investigation, sometimes the taxpayers opt for deposit of their partial or full GST liability arising out of the issue pointed out by the department. During the course of such search, inspection or investigation by furnishing DRC 03। तो कई बार जब इनके द्वारा पॉइंट आउट किया जाता है, यानी ऑफिसर्स के द्वारा सर्च इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पॉइंट आउट किया जाता है कि इनके ऊपर ये टैक्स लायबिलिटी बननी चाहिए, तो केवल इमेजिनेशन के आधार पर ही उसकी फुल या पार्शियल लायबिलिटी DRC 03 के माध्यम से जमा करा ली जाती है। तब हमें करना क्या है, इंस्टेंसेज हैव बीन नोटिस्ड वेयर सम ऑफ द टैक्स पेयर्स आफ्टर वॉलंटरी डिपॉजिटिंग GST लायबिलिटी थ्रू DRC 03 हैड एलिग्ड यूज ऑफ फोर्स एंड कोएर्जन ऑफ बाय द टैक्स ऑफिसर्स फॉर मेकिंग रिकवरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च और इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन। सम ऑफ द टैक्स पेयर्स हैव ऑल्सो अप्रोच ऑनरेबल हाई कोर्ट्स इन दिस रिगार्ड। तो ये जो DRC 03 के माध्यम से जो जमा कराया गया, उसके संबंध में बहुत सारे लोगों ने जो GST ऑफिसर्स हैं उनके दबाव को, उनके गलत नियत को उन्होंने पॉइंट आउट किया और हाई कोर्ट को अप्रोच किया और उनको बताया कि किस तरह से हमसे दबाव में ये DRC 03 के माध्यम से टैक्स जमा करा लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात क्या आती है, इन्होंने किस पॉइंट को ध्यान दिया है वो भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा कि किन किन पॉइंट को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके ही इसको बचाया जा सकता है। द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड, बोर्ड हैज़ फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ टू क्लैरिफाई द लीगल पोजिशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट ऑफ टैक्सेज फॉर इंश्योरिंग करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स। तो टैक्स पेयर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, दूसरा जो करेक्ट लॉ है, लॉ ऑफ एप्लीकेशन है, उसको इंश्योर करने के लिए। इट इज़ ऑब्जर्व दैट अंडर CGST Act 2017 ए टैक्स पेयर हैज एन ऑप्शन टू डिपॉजिट अ टैक्स वॉलंटरी बाई वे ऑफ सबमिटिंग DRC 03 ऑन द GST पोर्टल। तो GST पोर्टल पर DRC 03 के माध्यम से वॉलंटरी पेमेंट किया जा सकता है, ये एक टैक्स पेयर्स को सुविधा दी गई है। लेकिन सच वॉलंटरी पेमेंट्स आर इनिशिएटेड ओनली बाई द टैक्स पेयर बाई लॉगिंग इन टू द GST पोर्टल यूजिंग इट्स लॉगिन ID एंड पासवर्ड। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपके लॉगिन ID पर लॉगिन कर मतलब ID और पासवर्ड का यूज करके आप GST पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और उसके बाद ही इसको जमा करते हैं, बिना उसके ये टैक्स जमा नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना चाहिए। Voluntary payment of tax before issuance of so-called notice is permissible in terms of provision of section 73 subsection 5 and section 74 subsection 5 of the CGST Act 2017। देखिए जैसा कि इस सेक्शन में 73(5) और 74(5) में ये परमिशन दी गई है कि आप अपना टैक्स वॉलंट्री जमा कर सकते हैं और उसके लिए DRC 03 का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दिस हेल्प द टैक्स पेयर्स इन डिस्चार्जिंग देयर एडमिटेड लायबिलिटी सेल्फ असर्टेंट और एज असर्टेंट बाय द टैक्स ऑफिसर। चाहे वो अपनी स्वेच्छा से जमा करे अपनी टैक्स लायबिलिटी को, या फिर जो है टैक्स ऑफिसर के द्वारा अगर वो असर्टेंट की गई है तो उसे भी वो जमा कर सकता है। without having to bear the burden of interest under Section 50 of CGST Act 2017 for delayed payment of tax, and may also save him from higher penalty imposable on him subsequent to issuance of so-called notice under Section 73 or Section 74 as the case may be. देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में ये सुविधा दी गई है कि वॉलंटरी पेमेंट करके आप उसकी इंटरेस्ट लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और पेनाल्टी को भी रोक सकते हैं। तो इसलिए आप उस टैक्स को वॉलंटरी जब चाहें तब जमा कर सकते हैं, उसमें कोई बार नहीं किया गया है। तो इसलिए इसको, इस पर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा रहा है, ऐसी कोई रोक नहीं लगाई जा रही है कि इसको रोका जाए। लेकिन वो जब चाहे तो जमा कर सकता है। तो इसलिए आगे ये क्या कह रहे हैं, इट इज़ फर्दर ऑब्जर्व, देखिए मेन थिंग अब आपकी शुरू हो रही है, इट इज़ फर्दर ऑब्जर्व दैट रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड कैन बी मेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 ओनली आफ्टर फॉलोइंग ड्यू लीगल प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस एंड सब्सिक्वेंट कन्फर्मेशन ऑफ डिमांड बाई इशुएंस ऑफ एडजुडिकेशन ऑर्डर। देखिए, सेक्शन 79 में जब आप नॉट पेड शॉर्ट पेड की रिकवरी करते हैं तो रिकवरी करने से पहले आपको करना क्या होता है, नोटिस देना होता है, उसको डिमांड को फिक्स करना होता है, उसके लिए ऑर्डर करना होता है। तो ये जब तक कि एडजुडिकेशन ऑर्डर ना हो जाए तब तक आप उस पैसे को कैसे जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर दिया जाता था उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए इन्होंने ये बात क्लियर की है। आगे देखिए क्या कहते हैं, नो रिकवरी कैन बी मेड अनलेस द अमाउंट बिकम्स पेबल इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर पास बाय द एडजुकेटिंग अथॉरिटी। जब तक कि एडजुकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा कोई ऑर्डर पास ना कर दिया जाए, कोई अमाउंट पेबल ना हो जाए, तब तक नो रिकवरी, तब तक रिकवरी की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। इसलिए दबाव बना करके आप जमा नहीं करा सकते। और अदरवाइज बिकम्स पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड रूल्स मेड देयर, अगर सीजीएसटी एक्ट रूल के फॉलो करने में कोई पेबल बनता तो आप जमा कराएं। देयरफॉर देयर मे नॉट अराइज एनी सिचुएशन वेयर रिकवरी ऑफ द टैक्स ड्यूज हैज टू बी मेड बाय द टैक्स ऑफिसर फ्रॉम द टैक्स पेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी इशू डिटेक्टेड ड्यूरिंग सर्च प्रोसीडिंग्स। तो जब आप सर्च कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस समय अगर कोई इशू डिटेक्ट होता है, क्योंकि केवल डिटेक्ट होने के आधार पर ही आप उसके ऊपर प्रेशर बना करके टैक्स नहीं जमा करा सकते हैं, उसके लिए आपको नोटिस ऑर्डर और रिकवरी प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ेगा, तब जमा कराएंगे। However, the law does not bar the taxpayer from voluntary making payment of any tax liability ascertained by him or the tax officer in respect of such issues either during the course of such proceeding or subsequently. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लॉ जो है कहीं बड़ी बार नहीं करता है कि वॉलंट्री पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं, आप जब चाहें तब वॉलंट्री पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आप असर्टन करें या जो है टैक्स ऑफिसर असर्टन करें, उसमें कोई भी रोक नहीं है। Therefore, it is clarified that there may not be any circumstances necessitating recovery of tax due during the course of search or inspection or investigation proceedings. However, there is also no bar on the taxpayer for voluntary making the payments on the basis of assessment of their liability or non-payment, short payment of taxes before at any stage of such proceedings. The tax officer should, however, inform the taxpayer regarding the provisions of voluntary tax payments through DRC 03. तो आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय इस टैक्स को जमा कर सकते हैं DRC 03 के माध्यम से, लेकिन केवल जो सिचुएशन ऊपर बताई गई उस पर आप इसको रिजिड नहीं हो सकते हैं। तो ये आपके लिए सुविधा थी। अब यहाँ पर जो सख्ती के आदेश दिए गए हैं वो भी एक निगाह देख लेते हैं। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर सीजीएसटी जोन्स एंड पी डायरेक्टर जनरल डीजीजीआई आर एडवाइज दैट इन केस एनी कंप्लेंट इज रिसीव फ्रॉम ए टैक्स पेयर रिगार्डिंग यूज ऑफ फोर्स आर क्वर्जन बाय एनी ऑफ देयर ऑफिसर फॉर गेटिंग द अमाउंट डिपॉजिटेड ड्यूरिंग सर्च और इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन द सेम मे बी इंक्वायर्ड एट द अर्लीस्ट एंड इन केस ऑफ एनी रॉन्ग doing on the part of any tax officer, restrict disciplinary action as per law may be taken against the defaulting officers. तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई टैक्स पेयर इस तरह की शिकायत करता है तो उसकी जांच कराई जाए और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो ये एक था जिसमें अधिकारियों की मनमानी को रोकने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेंगे। थैंक यू।